ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहन जी ने सागर मंथन की बात आपके सामने रखी और मुझे भी शास्त्रों की एक बात याद आ गई। शास्त्रों में एक कपिल मुनि का जिक्र आता है, उसके पास एक गऊ थी जिसका नाम था कामधेनु। और कहते हैं कि वो कामधेनु गऊ ऐसी थी कि उससे जो भी मांगा जाए मिल जाता था। तो एक बार कोई बहुत बड़ा राजा जंगल में आया और उसको बड़ी भूख लगी थी, तो कहते हैं कपिल मुनि ने कामधेनु गाय को आदेश दिया और 36 प्रकार के व्यंजन प्रकट हो गए, वस्त्र आभूषण प्रकट हो गए, हीरे माणिक मोती प्रकट हो गए और उनसे उसने राजा की बड़ी सेवा की। तो राजा के मन में प्रश्न उठा कि जंगल में ये कीमती चीजें कहां से आई। तो उसको मालूम पड़ा कि इसके पास एक गाय है और वो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आगे तो कथा बड़ी लंबी है, लेकिन जैसे आज हमारा टॉपिक है कि बाबा ही हमारा संसार है, तो संसार में जितनी भी चीजें हैं, कपिल मुनि को तो कामधेनु से मिलती थी और हमको सारी चीजें बाबा से मिलती हैं। तो बाबा से आप कुछ भी मांग लो मिलता है ना, सबको अनुभव है ना, संकल्प किया और पूरा हो गया। इसलिए कहा बाबा ही हमारा संसार है। संसार में कितनी चीजें होती हैं, एक तो मनुष्य के संबंध होते हैं, ऐसे तो दुनिया में 650 करोड़ लोग हैं पर अपन सबको तो याद नहीं करते, लेकिन जो हमारे संबंधी हैं उनकी तो याद आती ही है, उनसे मिलने जाते हैं, वो हमसे मिलने आते हैं, मेल जोल में खुशी होती है। पहले जमाने में इतना रेडियो टीवी मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो लोग अपने मित्र संबंधियों के यहाँ मिलने जाते थे, मनोरंजन हो जाते थे, बाहर त्योहार आते थे, लोग इकट्ठे होते थे, मनोरंजन हो जाता था। इतने होटल भी नहीं थे, तो बाहर त्योहार चीजें बना के खाते थे या फिर मित्र संबंधियों के यहाँ जाते थे तो भी वैरायटी चीजें खाने को मिलती थी, होटल किसी को याद ही नहीं आते थे। तो मित्र संबंधी ये बहुत जरूरी है, इनकी याद आती मनुष्य को। दूसरी, जैसे हमने कहा, खाने पीने की चीजें, ऐशो आराम की चीजें, साधन उपभोग की चीजें, वो भी संसार में होती हैं, वो भी याद आती। और तीसरा, चूंकि हम 63 जन्मों के भक्त हैं तो भक्ति भी हरेक करता ही है, भक्ति का भी बहुत बड़ा झाड़ है, भक्ति की भी सबको याद आती, त्योहार भी भक्ति से ही जुड़े हुए हैं। तो एक भक्ति भी मनुष्य के जीवन में अनिवार्य है। अब जब से हमने शिव बाबा को पाया तब से क्या हुआ, तीनों चीजें दुनियावी, तीनों चीजें मित्र संबंधी, वस्तु भोग पदार्थ और भक्ति, तीनों चीजें किसमें मिल गई, एक बाबा में मिल गई। एक बाबा को पा लिया तो तीनों चीजें मिल गई, ऐसी महसूसता आती है ना। छोटा सा बिंदु है बाबा और देखो बिंदु में इतना बड़ा संसार है। जिन लोगों के पास संसार की इतनी चीजें हैं वो इतने खुश नहीं है जितने हम उस छोटे से बिंदु को पा करके खुश हैं, तृप्त हैं, अतिंद्रिय आनंद में झूलते हैं। कुछ याद ही नहीं आता, कोई बताता है कि भाई मुझे ये मिला ये मिला, तो हमको क्या लगता है ये तो हमारे स्टैंडर्ड से नीचे की चीज है, हमको तो इससे भी ऊंची ऊंची चीजें मिल गई, अब क्या सुने, क्या देखें, क्या पूछें, क्या वर्णन करें। तो इसलिए मन में क्या आता है, जो पाना था सो पा लिया, हमें सब कुछ मिला हुआ है, हमको इतना मिला हुआ है कि हमको सतयुग में भी जाने की इच्छा नहीं है। किसी को कहती हैं बाबा आपकी मुरली, आपका प्यार, ये सब कुछ सतयुग में भी नहीं मिलेगा। तो सतयुग तो बहुत सुंदर संसार है ना, वहां तो कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर भी हमको वो सुख वाला संसार भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा सुख बाबा की गोद में है। तो सबसे पहले भक्ति के संसार को हम देखते हैं। जब हम भक्ति में थे तो क्या क्या करते थे, किसी भगत को याद करो या अपने भक्ति के दिनों को याद करो, सुबह उठते ही सारा घर धुलाई करो, ये करो, फिर भोग की चीजें तैयार करो, फिर मंदिर जाने के लिए प्रबंध करो, फिर घर के बच्चों को कहो ये मत खाना, वो मत छूना, ये मत छूना, उससे पहले बहुत सारी खरीदारी करो, फिर पंडित से मुहूर्त निकलवाओ, फिर पंडित पुजारियों का सीधा अलग से निकाल कर के रखो, आने जाने वाले लोगों को प्रसाद के लिए वो सब अलग से निकाल के रखो, ये सब होता है ना। उसके बाद भाई पूरा सब कुछ उठा करके मंदिर में जाओ, फिर लाइन में लगो, फिर अपनी बारी का इंतजार करो, उसके बाद फिर बारी आती है, धक्का मुक्का खा करके उसके बाद फिर मूर्ति के दर्शन करो। अगर आपको वो शिव के मंदिर में जाना है और शिव के ऊपर वो जल चढ़ाते हैं, उसको भी एक विधि बोलते हैं, कौन सी विधि होती है, तो अगर वो विधि करनी है तो आगे से पुलिस वाला कहेगा जल्दी जल्दी निकलो, पीछे से धक्का मारने वाले कहेंगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। अब आपके हाथ में जो जल है वो भी छलक जाता है, आप ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाते, विधि भी नहीं कर पाते हो, सब कुछ जल्दबाजी में होता है, पूरा मंत्र पढ़ा नहीं इससे पहले ही आपको कहा बाहर निकल जाओ, ऐसे हुआ ना। उसके बाद प्रसाद बांटने में भीड़, उसमें छीना झपटी, तो कितना सारा भक्ति में पैसा भी खर्च किया, समय भी लगाया, टिप्पण भी घिसा दी, बहुत कुछ किया, और उसके बाद मिला क्या। अगर किसी दूसरे ने बाहर आके कह दिया कि मुझे तो दर्शन करने के लिए बड़े आराम से टाइम मिला, मैं तो खड़ा होके दर्शन करके आया, फिर क्या होता है, फिर सारी खुशी गायब हो जाती है, मुझे तो मिला ही नहीं, मैं तो बहुत जल्दी अच्छा मैं दोबारा जा करके देखता हूँ, क्या पता इस बार नंबर आ जाए, है ना। तो दर्शन करके भी कुछ मिला तो नहीं, तृप्ति तो नहीं हुई, अंदर कुछ भरपूर तो नहीं हुआ। अगर तीर्थ करने गए, कहते हैं जी गए थे तीर्थ पर पाप काटने, लेकिन जेब कटा के आ गए, जेब कटने के साथ और भी बहुत कुछ हो जाता है। तो इतनी भक्ति की भाई किस लिए, भगवान खुश हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान से वरदान मिल जाए, उद्देश्य तो यही था ना। लेकिन इतना सब करने के बाद तीनों बातें नहीं हुई, ले दे के दर्शन हुए तो मूर्ति के, ले दे के दर्शन हुए तो पंडित पुजारियों के। तो इतना विस्तार, फिर किसी ने कहा भाई ए तीर्थ की महिमा कम है, आप उस वाले तीर्थ पे जाओ, जाते ही मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो फिर क्या किया, फिर दूसरे तीर्थ के लिए तैयारी करी। किसी ने कहा भाई ए देवता से प्राप्ति नहीं होती, दूसरे से होगी, तो फिर दूसरे की पूजा पद्धति विधि उसका अनुमान उसका भी कुछ खरीदा, उसकी भी किताबें खरीदी, उसको भी पढ़ना शुरू किया। तो सारा जीवन तीर्थों का चक्र लगाने में, मूर्तियों का दर्शन करने में, चढ़ावा चढ़ाने में ही चला गया। और जब बाबा मिला तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, अपने को बिंदु समझ करके मुझ बिंदु को याद करो, सारे तीर्थ एक बिंदु में, सारे शास्त्र एक बिंदु में, सारे श्लोक, सारे महात्मा गुरु गोसाई एक बिंदु में, सारा प्रसाद चढ़ावा एक बिंदु में, सब कुछ एक में आ गया ना। और जो तृप्ति इतना विस्तार में नहीं मिली, वो तृप्ति एक बिंदु में मिल गई। अभी आप सब खुश है ना, कि याद आता है कि भाई कोई दर्शन बाकी रह गया, कोई पूजा बाकी रह गई, नहीं ना। तो भक्ति का इतना बड़ा संसार एक बिंदु में समा गया, एक बिंदु में जल डाला। कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाई, रहिमन सींचो मूल को, फुलई फलई अघाई। भाई पेड़ की जड़ में आप पानी डालेंगे ना तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, और अगर आप पत्ते पत्ते को सींचेंगे तो आपका पानी भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, और पेड़ फिर भी सूखा का सूखा रह जाएगा। तो एक बिंदु में स्मृति रूपी जल डाला, सारे देवता खुश हो गए। पहले डर लगता था, हनुमान जी को अगरबत्ती लगाई तो श्री कृष्ण जी नाराज हो जाएंगे, कृष्ण जी को लगाई तो राम जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन अभी तो एक बाबा को याद किया तो बाबा के साथ 33 करोड़ देवता भी प्रसन्न हो गए, सभी महात्मा भी प्रसन्न हो गए। तो एक बिंदु में भक्ति का सारा संसार समा गया। तो बाबा हमारा संसार है, बाबा हमारा इष्ट है, बाबा हमारा देवों का देव, सर्वोच्च सुप्रीम है। एक बाबा की याद में सारे वरदान, सारी दुआएं हैं। एक बाबा की याद में जन्म जन्म के पापों का नाश है। इसमें डालेंगे तो पाप नाश हो जाएंगे, इसके दर्शन करेंगे तो पाप उतर जाएंगे, ऐसे चक्र लगाएंगे तो पाप उतर जाएंगे, यहाँ धागा बांधेंगे तो पाप उतर जाएंगे, ये वाला मस्तक में लगाएंगे तो उतर जाएंगे, ये वाली चीज़ खा लेंगे तो पाप उतर जाएंगे। पाप उतारने के लिए भी कितने कर्म कांड, लेकिन बाबा ने कहा एक मुझे याद करो, एक बिंदु को याद करो तो 63 जन्मों के पाप उतर जाएंगे। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा ये योग बड़ा शक्तिशाली है, इससे सबकी हड्डियां नरम हो जाती है। जो भी हमारे विरोधी थे, जो भी ऑपोजिट लोग थे, वो भी क्या हो गए, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा योग बढ़ा सबके सब सहयोगी बन गए, ऑटोमेटिक ना बोलने वाले बोलने लगे, दूर वाले नजदीक आ गए। जैसे कहते हैं जहां अग्नि होती है वहां सेंक लेने के लिए लोग अपने आप आ जाते हैं, जब फूल खिलता है तो खुशबू लेने भंवरे अपने आप आ जाते हैं, निमंत्रण नहीं देना पड़ता, और जब आत्मा में शक्ति भरती है तो उसका फायदा उठाने भी लोग अपने आप आ जाते हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। तो ये योग इतना शक्तिशाली है, एक बिंदु के साथ योग लगाना माने अपने आप में इतनी शक्ति भरना कि हमारी सब परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं, सब समस्याएं हल हो जाती हैं, सब सिद्धियां हमको प्राप्त हो जाती हैं, सब मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं, हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो आगे के लिए हम इतने सावधान हो जाते हैं कि पुण्य ही पुण्य का खाता जमा करते हैं, पाप करने का जो देह अभिमान था या दूसरे विकार थे वो भी सब खत्म हो जाते हैं। तो एक बाबा की याद में भक्ति का सारा संसार सिमट गया। दूसरा संसार में क्या होता है, संबंध होते हैं। कितने संबंध है भक्ति में, कहते हैं मनुष्य के भगवान के साथ 108 संबंध होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, बहुत सारे संबंध है ना, लेकिन ये 108 संबंध तो विस्तार वाले हैं, किसी को होंगे किसी को नहीं भी होंगे, लेकिन सार रूप में हम सबके 7 संबंध हैं, बाप टीचर सतगुरु माता साजन पुत्र मित्र, ये 7 संबंध, इन संबंधों से हमारी दुनिया बनती है, और ये दुनिया बाबा में समाई हुई है। जब हम परम धाम में है ना तो बाबा और हम भले इकट्ठे रहते हैं लेकिन वहाँ किसी संबंध का अनुभव नहीं है। तो जब हम परम धाम में थे तो ऐसे तो बाबा और हम बिल्कुल पास पास होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उस समय डोरमेंट स्टेज होती है आत्मा की, साकार में जो भगवान से अनुभव होते हैं वो परम धाम में जब हम होते हैं, देह त्याग करके जब परम धाम जाते हैं तब नहीं होते हैं। उसके बाद हम परम धाम से सतयुग में उतर के आए तो हमारे संबंधों का संसार बहुत छोटा था, क्योंकि सतयुग में तो एक बच्चा एक बच्ची होता है, तो माता पिता एक बच्चा एक बच्ची, कई भाई बहन होते हैं तो परिवार बहुत विस्तृत हो जाता है। उसके बाद जब द्वापर युग आया तो परिवार बड़े बड़े हो गए, दो भाई बहन, चार भाई बहन, छह भाई बहन, आठ भाई बहन, दस भाई बहन, पंद्रह भाई बहन, तो क्या होगा? कई मौसियाँ हो जाएंगी, कई चाचे हो जाएंगे, कई मामे हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा बड़ा परिवार हुआ। उसके बाद फिर जब संगम युग में आए तो फिर परिवार बहुत छोटा हो गया। बाबा कहते हैं ये एक फैमिली है जिसमें माता पिता और बच्चे हैं। साकार ब्रह्मा बाबा के नाते से माता पिता और हम भाई बहन, और निराकार शिव बाबा के नाते से केवल भाई भाई, तो बहुत छोटा संसार हो गया। अब लौकिक दुनिया में अंतिम जन्म आते आते संबंध जो हैं वो बंधन में बदल जाते हैं। आज आप देखो दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, मुकदमे हैं, सबके सब संबंधों में मिलेंगे। इसलिए गीता के भगवान ने कहा दे सही दे के सब संबंधों को भूल, मेरी शरण में आ तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने देह के संबंधों को भूलने की बात कही, क्योंकि जब संबंध बंधन में बदल जाते हैं तो वो सुख देने के बजाय दुखदाई बन जाते हैं। वो हमारे पाँव में डली हुई एक बेड़ी बन जाती है, जंजीर बन जाती है। अब मनुष्य संबंधों के बिना रह तो नहीं सकता, जन्म जन्म की उसको आदत पड़ी हुई है। अगर वो देह के संबंधों को छोड़ दे तो फिर क्या करे? तो भगवान ने कहा देह के संबंधों को जो बंधन बन गए हैं उनको भूल और मुझे अपना सर्व संबंधी स्वीकार कर, मेरी शरण में आ, मुझे अपना संबंधी बना ले। और अनुभव ये कहता है कि जब हम भगवान को अपना संबंधी बना लेते हैं ना, तो जो दुनिया वाले संबंधी थे जिनके साथ हिसाब उलझे हुए थे वो भी सुलझ जाते हैं। और अगर उन्हीं को सुलझाने में लगे रहते हैं तो ना तो वो सुलझते हैं और ना भगवान का सुख हमें मिल पाता है। इसलिए शास्त्रों में बहुत गायन है कि किस किस ने भगवान को किस किस संबंध से याद किया और भगवान ने किस किस को किस संबंध से सुख दिया। एक तो मित्रता का बड़ा गायन है। आज की दुनिया में देखो लोग मित्रों से कितना धोखा खाते हैं, मित्रों से कितनी गलत बातें सीखते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान मैं अपने दुश्मनों से तो अपने आप निपट लूंगा, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। सहेलियां बन करके, मित्र बन करके लोग ठगी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गलत काम भी करवा लेते हैं, गलत वायदे भी करते हैं, कहना कुछ और फिर करना कुछ करते हैं, चोरी लूट बहुत कुछ कर लेते हैं। मित्र बन करके आते हैं और दुश्मन से भी खराब काम कर जाते हैं। तो ऐसे समय में जब इस संसार के मित्रों पर भरोसा नहीं है, संसार के मित्र संसार सागर पार करवाने के बजाय डुबोने वाले बन जाते हैं, तो भगवान ने क्या कहा मुझे अपना मित्र बनाओ। और भक्ति मार्ग में दिखाते हैं तो सुदामा ने भगवान को मित्र बनाया। एक दिखाते हैं सुग्रीव ने भगवान को मित्र बनाया, और एक दिखाते हैं अर्जुन ने भगवान को मित्र बनाया। तो तीनों को, सुदामा तो बहुत गरीब था लेकिन उस गरीब के साथ भी भगवान ने कितना सुंदर व्यवहार किया। एक मुट्ठी चावल लेकर के बदले में उसको महल दे दिए। दुनिया में ऐसा कोई मित्र है जिसके घर आप एक मुट्ठी चावल लेके जाओ और वो आपके चरण भी धो दे और आपको अपनी गद्दी पर भी बिठा दे और फिर जाते समय आपके नाम सोने के महल करवा दे? ऐसा तो केवल एक भगवान ही हो सकता है। भगवान के अलावा आज तक ऐसा किसी ने किया? मित्र दुनिया में बहुत हुए लेकिन हर एक मित्र ने मित्र से इतना नहीं पाया। जैसे कहते हैं भाई दुर्योधन और कर्ण भी मित्र थे, लेकिन कैसी मित्रता थी। दुर्योधन कैसी भी गलत बात कह देता था और कर्ण उसको मानने पर मजबूर हो जाता था, क्योंकि उसके एहसानों के तले दबा हुआ था। तो दुर्योधन ने उससे कितने गलत गलत काम करवाए और आखिर बेचारा युद्ध करते करते मर ही गया। तो ऐसी मित्रता, दुर्जन के साथ की गई मित्रता का परिणाम गलत निकलता है। एक मित्रता द्रुपद और द्रोणाचार्य की भी दिखाते। एक ब्राह्मण था, एक राजा था, लेकिन राजा को अपनी राजाई का अहम आया और उसने उस ब्राह्मण मित्र की इंसल्ट की, तो बाद में उसने राजा से बदला लिया, उसका राज्य जीता, उसको बंदी बनाया, बहुत कुछ हुआ। तो इस मित्रता में भी क्या प्रतिशोध, बदले की अग्नि, इसका रिजल्ट भी गलत निकला। लेकिन भगवान और सुदामा की मित्रता अमर हो गई, आज भी हम उसको याद करते हैं। तो वो किसका गायन है, सुदामा कौन है? हम सब सुदामा है ना। भगवान के दर पर आए तो एक मुट्ठी चावल ही तो लेकर के आए। सतयुग की बादशाही की भेंट में हम बाबा को जो कुछ देते हैं वो क्या है, एक मुट्ठी चावल ही तो है ना। और बदले में बाबा हम बच्चों को सोने के महल देता है, कितनी प्यार से हम बच्चों को नमस्ते करता है, कहता है मैं पलकों पे बिठा करके ले जाऊंगा, तुम तो मेरे नूरे रतन हो। बाबा कहता है मेरे पांव छूने की आवश्यकता नहीं है। कल की मुरली में बाबा ने कहा बाप तो बच्चों का सेवक होता है, टीचर भी स्टूडेंट का सेवक होता है, तो मैं तो तुम बच्चों का सेवक बन करके आया हूँ, मुझे तुम बच्चों से कुछ भी नहीं चाहिए। तो इतना ऊंचा बाप, देवों का भी देव, 33 करोड़ देवताओं को भी रचने वाला महात्मा भी जिसका गायन पूजन करते हैं, इतना ऊंचा बाप, और वो हम सुदामा जैसी आत्माओं को कितना प्यार से स्वीकार करता है, गोद में बिठाता है, सेवा करता है, अपना बना लेता है, हमारे दुख दूर कर देता है और 21 जन्मों के लिए हमें माला माल भी कर देता है। इसलिए हमारा सारा मित्रता का संसार किसमें सिमटा हुआ है? प्यारे से प्यारा मित्र कौन? शिव बाबा। प्यारे से प्यारा सखा सखी मित्र शिव बाबा। इतना प्यारा सखा सखी पाकर के हमें और कोई याद आएगा? क्योंकि सब इससे नीचे ही है, तो ऊंची चीज को पाके नीची चीज क्यों याद आएगी भला। और दूसरा जो गायन है सुग्रीव की और भगवान की मित्रता दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में तो लोगों ने राम को ही भगवान दिखाया ना, बाबा कहते हैं ये यादगार शास्त्र है। तो उसमें क्या दिखाते, सुग्रीव ने कहा कि चलो अपन आपस में संधि कर लेते, भगवान को कहा आपस में समझौता करते हैं, मेरी भी पत्नी खो गई है, तुम्हारी भी पत्नी खो गई है, तो तुम मुझे मेरी पत्नी ढूंढ के ला दो और मैं तुमको तुम्हारी पत्नी ढूंढ के लाने में मदद करूंगा। तो भगवान ने कहा सुग्रीव इस प्रकार के जो समझौते होते हैं ना वो तो राजाओं के बीच में होते हैं, तुम मेरा ये काम कर दो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। जैसे भारत अमेरिका के साथ करता है ना, भाई तुम मुझे अनाज दे दो मैं तुमको फलानी चीज दे दूंगा, तुम मुझे अमुक चीज दे दो मैं तुमको अमुक चीज दे दूंगा। तो राजाओं के बीच में जो समझौते होते उनमें मित्रता नहीं होती, वो तो लौकिक समझौते होते हैं, स्वार्थ वाले समझौते होते, अपना अपना प्रॉफिट देख करके समझौते किए जाते हैं। तो भगवान ने सुग्रीव को कहा मैं तो सखा हूं आपका, मैं राजा बनकर के आपसे मित्रता नहीं कर रहा हूं। और जो सखा होता है वो किसी शर्त को बीच में रख के मदद नहीं करता कि तुम पहले ऐसे करोगे फिर मैं ऐसे करूंगा, नहीं। भगवान ने कहा मेरा जो स्वभाव है ना वो मदद करने का स्वभाव है, कल्याण करने का स्वभाव है, देने का स्वभाव है। कोई मुझे कुछ दे या ना दे लेकिन मुझे तो देना ही है। इसलिए सुग्रीव मैं तुम्हारा सखा हूं, व्यापारी नहीं हूं। मेरे साथ व्यापारियों की तरह बात मत करो। मैं सखा हूं, बताओ तुमको मेरे से क्या मदद चाहिए, पहले मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और कहानी में दिखाते हैं कि पहले भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया और उसके बाद सुग्रीव ने सीता को ढूंढने के लिए अपने अनुचरों को भेजा। तो यहां भी कई बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं बाबा मैंने आपके नाम से 100 बोरी गेहूं की रखी है, अगर उनका भाव दोगुना हो गया तो जो पैसा आएगा ना उसमें आधा आपका और आधा मेरा। तो ये क्या हो गया, जैसे भगवान व्यापारी हो, जैसे भगवान सौदागर हो, जैसे भगवान कोई लौकिक व्यक्ति हो जिससे हम हिसाब किताब की बात करते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे सौदे मैं नहीं करता, ऐसे सौदों के बीच में मैं नहीं जाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने इंटरनेट पे देख करके सरसों का सौदा कर लिया, घाटा लग गया। तो उसकी घरवाली आती थी आश्रम पे, उसने आना बंद कर दिया। उसने कहा मैं तो रोज आश्रम पे जाती थी, तो भगवान ने मेरी मदद क्यों नहीं की, अब तुम सौदा तो करो इंटरनेट पे, तो भगवान मदद करने कहाँ आएगा। पैसा लेन देन इंटरनेट के थ्रू किया, बातचीत इंटरनेट के थ्रू की, भगवान तो बीच में था ही नहीं, था क्या कहीं बीच में। भगवान तो कब याद आया, जब तक इंटरनेट से फायदे की बात होती रही, फायदे का विश्वास रहा, तब तो भगवान याद आया ही नहीं। फिर याद कब आया, जब घाटा लग गया। तो इसका मतलब वो तो घाटे का साथी है, नफे का साथी तो है ही नहीं, नफे के साथी तो कोई और होते। इसलिए भगवान के साथ कोई शर्त नहीं चाहिए। हाँ भगवान पहले ही गारंटी देता है, कहता है एक हिम्मत का कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम से मदद मैं करूंगा। लेकिन पहले किसको करना पड़ेगा, पहले देखो सुदामा ने पहल की, क्या पहल की, एक मुट्ठी चावल लेके पैदल चल करके पहुंच गए, एक कदम बढ़ाया हिम्मत का। तो भगवान ने 1000 गुना, अरब गुना, पदम गुना मदद कर दी। तो पहले हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, फिर मदद मिलेगी। और तीसरी मित्रता दिखाते हैं अर्जुन की और भगवान की। तो अर्जुन के सामने क्या समस्या थी, एक तो मोह की बहुत बड़ी समस्या थी, एकाका चाचा मामा मैं इन सबको कैसे मारूं। तो ये वास्तव में जितने भी विकार है ना, इन विकारों को ही हमने अपना मित्र संबंधी बनाया हुआ है। मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये मुझे क्या कहेंगे, इस विकार को छोड़ दूंगा तो ये क्या कहेंगे, इसको छोड़ दूंगा तो ये क्या कहेंगे। तो भगवान ने अर्जुन को कहा सब चीजों का परित्याग करो। और दूसरा अर्जुन को क्या चिंता थी, दूसरा अर्जुन को चिंता थी मैं पता नहीं हारूंगा कि जीतूंगा। तो उसके लिए भी भगवान ने क्या कहा, तू केवल निमित्त मात्र है, हार या जीत तो मेरी है। तो हम जो भी सेवा करते हैं वास्तव में उसमें हम सब कौन है, निमित्त मात्र है ना। सेवा तो किसकी है, बाबा की है। तो देखो युद्ध के समय कहते हैं अर्जुन तो चैन से सोता था और भगवान को चिंता होती थी। तो संगम युग में भगवान के साथ हमारी ऐसी दोस्ती है कि हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी लोकलाज भगवान को दे देते हैं और भगवान हमारे सारे बोझ उठा लेता है। और जब भगवान बोझ उठा लेता है तो हम क्या बन जाते हैं, निश्चिंत, हल्के, उड़ने वाले फरिश्ते। इसलिए भगवान हमारा सखा है, हमारे सब बोझ उसने उठा लिए हैं। भगवान कहता है कितना भी भारी बोझ हो मेरे लिए वो भार नहीं है, और तुम बच्चों के लिए तो छोटी सी बात भी भार वाली बन जाती है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है। तो जब सर्वशक्तिवान हमारा सखा बन गया तो हमको क्या करना है, सब बोझ भगवान को सौंप देने हैं। तो ये मित्रता, मित्रता का संसार तो बहुत बड़ा होता है ना, भाई तो गिनती के होते हैं, भाई एक भाई है के दो भाई है, बहनें भी गिनती की होती है, माता पिता भी एक माँ होती है एक पिता होता है, लेकिन मित्र कितने होते हैं, कोई गिनती नहीं होती, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, है ना। तो उन सारे मित्रों की जगह अब हमारा मित्र कौन बन गया, बाबा। बाबा ही हमारा संसार है, बाबा ही हमारा मित्र है, बाबा ही हमारा सर्व संबंधी है, और भी बहुत सारे संबंध है। गुरु का संबंध याद कीजिए, श्री बाबा हमारा सच्चा सतगुरु है। लौकिक दुनिया में लोगों को गुरु से बड़ा भय लगता है, गुरु श्राप ना दे दे, नाराज ना हो जाए, कहीं कोई बात का उल्लंघन ना हो जाए, लेकिन गुरु की नजरों से ना गिर जाएं, बहुत प्रकार के भय होते। लेकिन हमारा गुरु ऐसा है जिससे हमको भय नहीं लगता, लेकिन जिससे हमें बहुत प्यार है, भय नहीं है। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ भय नहीं होता, और जहाँ भय होता है वहाँ प्यार नहीं होता है। तो लौकिक दुनिया में कहती हैं गुरु की नजरों से गिरा हुआ कभी उठ नहीं सकता, कहते हैं घोड़े से गिरा हुआ उठ सकता है लेकिन नजरों से गिरा हुआ नहीं उठ सकता। फिर कहते हैं गुरु का निंदक फोर ना पाए। तो लोगों ने गुरु के नाम से लोगों को बहुत डरा दिया। यहां भी कई लोग आते हैं तो कहते हैं हम अपने गुरु को याद नहीं करेंगे और शिव बाबा को याद करने लग जाएंगे तो क्या होगा। तो हम उनको कहते हैं भाई आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया, आप सब में भी बहुतों ने गुरु किए होंगे ना, तो गुरु ने क्या सिखाया। कोई भी दुनिया का गुरु एक ही बात कहता है, कोई गुरु ये नहीं कहता मुझे याद करो, हर गुरु क्या कहता है उसको याद करो। तो जो गुरु ने कहा था वो हम करने लग पड़े ना, हमारे गुरु ने कहा था उसको याद करो, और अब हम किसको याद कर रहे हैं, उसी को तो याद कर रहे हैं। तो गुरु का कहा मान रहे हैं ना, तो अब डरने की क्या बात है। लौकिक दुनिया के जो गुरु होते हैं उनके लिए लोग कहते हैं कि वो सदगति करेगा, अंत समय आएगा तो आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, लोग ऐसा कहते हैं, अंत घड़ी में आपकी रूह को वो साथ ले जाएगा। लेकिन देखो कई बार तो गुरु चेले से पहले शरीर छोड़ देता है, और चेले कहते हैं जी हमारा गुरु तो ज्योति ज्योत समा गया, निर्वाण चला गया। अब गुरु निर्वाण चला गया, फिर जब आप शरीर छोड़ेंगे तो वो निर्वाण में से दोबारा निकल के आएगा क्या आपको साथ ले जाने के लिए? होता है ऐसा, या तो वो निर्वाण में गया नहीं, उसने पुनर्जन्म ले लिया, अगर पुनर्जन्म ले लिया तो भी बेचारा कैसे आएगा देह छोड़ के आपके पास, और अगर वो निर्वाण में चला गया तो भी कैसे आएगा आपके पास, ज्योति ज्योत गया तो वापस नहीं आएगा, ऐसे कहते हैं ना लोग। लेकिन हमारा सतगुरु कैसा है, सतगुरु अकाल जो बोले सो निहाल कहते हैं ना, तो हमारा सतगुरु तो अकाल है, कितने गए लेकिन हमारा सतगुरु तो कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा। सतगुरु अकाल मूरत है, काल का जिस पर प्रभाव नहीं, सतगुरु कहते ही उसको है जिसको काल ना खाए, जिसे काल खा जाए वो सतगुरु नहीं हो सकता, वो गुरु हो सकता है, और गुरु तो दुनिया में बहुत है। बाबा मुरली में कहता है लौकिक विद्या पढ़ाने वाला भी गुरु है, थोड़ा ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला भी गुरु है, और कोई हुनर सिखाने वाला उसको भी लोग गुरु कहते, लेकिन गुरुओं का भी परम गुरु सतगुरु, सदगति देने वाला गुरु, सत्य मार्ग दिखाने वाला गुरु, सतलोक में ले जाने वाला गुरु, सच्चा ज्ञान सिखाने वाला गुरु, सत्य पर सत्य के आधार पे जीत प्राप्त कराने वाला गुरु, सतगुरु तो केवल एक ही है। तो अब हम बच्चों का भय निकल गया, हमारा सतगुरु बड़ा मीठा है, प्यार से हमको पढ़ाता है और प्यार से पलकों पर बिठा करके ले जाने का उसने वायदा किया है। तो पिता, टीचर, सतगुरु, माता, भाई, पुत्र सब एक शिव बाबा में आ गए, आ गए ना। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं अगर एक भी संबंध से मुझे याद नहीं किया तो वो संबंध फिर खींचेगा, याद आएगा, बुद्धि खिसक करके उसी संबंध में चली जाएगी। समझो किसी को पोते से बहुत प्यार है और उसने शिव बाबा को पोतरा नहीं बनाया तो क्या होगा, चुपके से बुद्धि खिसक करके जाएगी। बच्चे से प्यार है, शिव बाबा को बच्चा नहीं बनाया तो चुपके से बुद्धि खिसक के जाएगी। इसलिए बाबा कहता है मुझे अपना सब कुछ बना लो, एक भी संबंध ऐसा ना हो जिसका सुख हम बाबा से ना लें, सब संबंधों का सुख बाबा से लो। भगवान बनने को तैयार है तो हम क्यों ना बनाएं। और तीसरी चीज कौन सी थी, वस्तु पदार्थ। ये भी तो संसार में बहुत आकर्षित करने वाली चीजें है ना, खाने पीने के साधन, पहनने ओढ़ने के साधन, सुख आराम के साधन। तो जब हम कहते हैं शिव बाबा ही हमारा संसार है, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग जीवन बिताऊं, सब कुछ हम शिव बाबा के साथ करते हैं, तो हमारा खिलाने का जिम्मेवार कौन है, शिव बाबा है ना। शिव बाबा ने क्या कहा है कि ब्राह्मण बनने वाले बच्चों को मैं दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा, भले तीन चार प्रकार की सब्जी ना हो लेकिन दाल रोटी की तो बाबा ने जिम्मेवारी ली है। और हमें अब खिला कौन रहा है, बाबा खिला रहा है ना, अब भी खिला रहा है, आगे भी खिलाएगा, बाबा की गारंटी है। तो जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने की गारंटी शिव बाबा की है। आवश्यकताएं बाबा अवश्य पूरी कर रहा है, करेगा। शिव बाबा का बच्चा कभी भी भूखा प्यासा रह नहीं सकता, उसको तीन पैर पृथ्वी भी जरूर मिलेगी, ये भी बाबा की गारंटी है। तो दुनिया में बाबा ने कहा देखो आप बच्चों का अंतिम जन्म भी कितना अच्छा है, जब हम शिव बाबा के बने तो हमारी पिछले कल्प की प्रारब्ध बिल्कुल खुटने वाली थी, लेकिन फिर भी हम अच्छे थे, खा पी रहे थे, अच्छा शरीर था, दुनिया की भेंट में तो बहुत अच्छे थे ना। तो पिछले कल्प में बाबा ने हमारा जो भाग्य बनाया वो इस कल्प के अंतिम जन्म तक भी चलता रहा, कितनी बड़ी जिम्मेवारी ली। इसलिए बाबा कहता है मैं केवल 21 जन्म का भाग्य नहीं बनाता लेकिन पूरे 5000 वर्ष का भाग्य बनाता हूं। 5000 साल में यानी के कलयुग के अंतिम जन्म तक की भी इनडायरेक्ट बाबा जिम्मेवारी लेते हैं। और अंतिम जन्म के बाद हमें बाबा फिर मिल गए तो अब हम फिर से भरपूर हो गए। तो हमें किसी भी जिस वस्तु में, जिस चीज में, जिस पदार्थ में भगवान की दुआएं ना हो, जो भगवान को अर्पित न किया गया हो, जो बाबा की श्रीमत प्रमाण ना हो, उसमें हमारी आंख डूबी नहीं सकती, वो हमारे लिए मिट्टी के ढीले के बराबर है। भक्ति मार्ग में कहते थे पर दारेशु मातृवत पर धनम लोष्टवत, भाई दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो और पर नारी को माता के समान समझो, भक्ति में ऐसे कहते थे। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में आ जाते हैं तो शिव बाबा हमको क्या कहता है, शिव बाबा कहता है बच्चे अपनी भी जो नारी है उसको भी माता के समान समझो और अपना जो धन है उसको भी, अपने धन को भी क्या समझो, दुनियावी जो धन है उसको भी क्या समझो, उसमें भी ममत्व नहीं रखो। निमित्त बन करके अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करो तो बाबा इस अंतिम जन्म में हम जो बाबा के निमित्त लगाएंगे, बाबा के निमित्त उस धन से ममत्व निकालेंगे तो बाबा वही हमें पदम गुणा करके वापस लौटाएगा। इस जन्म की तो बाबा जिम्मेवारी लेगा ही, आगे के जन्मों की जिम्मेवारी भी बाबा लेते हैं। तो बाबा से हमें सब कुछ मिल रहा है। बाबा हमारा संसार है, वस्तु पदार्थ संबंध सब जिम्मेवारियां बाबा से पूरी हो रही हैं। इसलिए भक्ति मार्ग की गीता में कहती हैं, योग क्षेम वहामि अहम्। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू केवल मेरे कहे अनुसार चल, तेरे योग क्षेम का वहन मैं करूंगा। योग क्षेम का मतलब है तेरी जो लौकिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा मैं करूंगा। तुमको मेहनत करने की और चिंता करने की जरूरत ही नहीं। कितने जन्म चिंता की, ये एक जन्म निश्चिंत बनने का है। भगवान की गोद में अतिंद्रिय आनंद में झूलने का है। इसलिए हम बाबा के बच्चों का, बाबा ही संसार है, बाबा में ही सारे सुख हैं, बाबा में ही सारे आनंद और बाबा में ही सारी प्राप्तियां हैं। बाबा ने कहा प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जिस ब्राह्मण के खजाने को स्वयं भगवान भरपूर करे, क्या उस खजाने में कोई कमी हो सकती है? वो सदाई भरपूर है। बाबा कहते हैं देवताओं के खजाने से भी अधिक भरपूर है ब्राह्मणों का खजाना। इसलिए हम बाबा के बच्चे सदा संतुष्ट हैं, सदा खुश हैं, सदा भरपूर हैं, सदा दूसरों को देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं। कहते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। वो ब्राह्मण जो कल देवता बनने वाले हैं उनको लोग नमस्कार करते हैं। तो देवता माना देने वाले, लेकिन देवता देने वाले कब बने? जब उन्होंने ब्राह्मण रूप में भरपूर रह करके सबको दिया ही दिया। तो हम दाता के बच्चे दाता हैं, एक दाता में, एक दाता से हमें सब कुछ मिल रहा है, एक बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। एक बीज को पाया माना सारे झाड़ को पा लिया, सब कुछ पा लिया। अब हमें दाएं बाएं इधर उधर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही अनुभव है ना सबका। ओम शांति।
सभी चाह आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथा, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथा, वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह। मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला, चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह।
शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया। निर्बल को आकर के शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया। स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह, स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह।